ताए मरबूता। इसके बाद अगली अलामत आप देख रहे हैं, या के ऊपर खड़ी जबर लगी हुई है, इसको बोलते हैं याए ममदूदा। ना लिख सके ना लिखे, लेकिन आपको पढ़नी आनी चाहिए, ताए मरबूता याए ममदूदा। आगे अगर आप देखें ना, तो अलिफ के ऊपर जो मद आ रही है, इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। पहले को या ममदूदा कह लें या खड़ा जबर कह लें, फिर अलिफ के ऊपर आप ये लगा के जो मद लगी है और अलिफ था। बेसिकली ये बहुत आसान है, ये सब एक ही चीज़ की अलामतें हैं, गोलता हो, या के ऊपर खड़ा जबर हो, और अलिफ के ऊपर मद के बाद हमज़ा हो, और अलिफ ता हो। जब ये चारों अलामतें किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आए तो ये मुअन्नस की अलामत होती है। ये तमाम अलामतें मुअन्नस इस्म के आखिर में आती हैं और अमूमन इनका अलग तर्जमा करना मुमकिन नहीं होता। मसलन देखते हैं, गोलता ताए मरबूता जिसको आप कहेंगे, ये अलामत वाहिद मुअन्नस को ज़ाहिर करती है। मसलन मुस्लिमतुन, तर्जमा बार बार याद करके सबको पता है मुस्लिमतुन से मुराद वो एक मुस्लिम औरत है। आप मुस्लिमतुन का तर्जमा कभी एक मुस्लिम मर्द तो नहीं करते ना, तो इसका मतलब कि आपको ये अलामत आती है, पता है। सिर्फ यहाँ हम इन सारी अलामतों को एक जगह जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो मुस्लिमतुन ताकी दो पेश एंड पे आ रही हैं, काफिरतुन कुफर करने वाली, इसी तरह तौबतुन तौबा को कहते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक मसला है कि जैसे मुस्लिमा से तो लग रहा है ना कि एक औरत है मुस्लिम जो इस्लाम लाई, काफिरतुन से एक औरत है जो कुफर लाई। जो ही मैंने तौबतुन पढ़ा तो आप सोच में पड़ जाएंगे ये मर्द होता है कि औरत होती है। तो ये समझ लीजिए कि अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस से मुराद ये हमारा ये जेंडर नहीं है। यानी मिसाल है, जिन है तो जिननी, शेर है तो शेरनी, ये नहीं होता। अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ों के लिखने की फॉर्म होती है ना, उसी फॉर्म से हम तौबा, जैसे अब यहाँ लफ्ज़ तौबा तो ना, तौबा कोई एग्जिस्टिंग चीज़ तो नहीं है ना जिसको हम देखें कि खड़ी है एक तौबा, आप कहते हैं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। लेकिन तौबा तुन लफ्ज़ अगर आपको आ जाए कि भाई बताइए ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो आप गोल ता को देख कर कहेंगे कि ये मुअन्नस है। इसी तरह जैसे हम अक्सर आपको मिसालों में बताते हैं जन्नतुन, इसी तरह जहन्नुम के सारे नाम, आपने वो मिसालें पढ़ी थी ना मुअन्नस की इकसाम में, तो यहाँ जहन में रखें जैसे कि जन्नतुन बाग है, ये मुअन्नस है। अब कोई आपसे पूछे कि जन्नतुन अरबी में मुअन्नस होता है कि मुअन्नस, तो आप कहेंगे ये तो बाग है। उर्दू में तो हम कहते हैं उसका बाग, ये तो ये हम कहते हैं कि उसकी बाग, तो आप उस पर नहीं जाएंगे बल्कि लफ्ज़ों को देखेंगे। जन्नतुन ता पे दो पेश आगे, बस आंखें बंद करके आप इसको मुअन्नस कह दें। सबसे आसान अलामत शायद यही है, जिस चीज़ के आखिर में गोल ता आ जाएगी इसम के अंदर, तो ये एक औरत को साबित करेगी। ये भी नोट कीजिए, वाहिद यानी मुअन्नस है, एक होगी। जैसे कि कुरान पाक में सूरत अल-काहफ 558 में आता है, वरब्बुकल गफूरु ज़ुर्रहमा, और तेरा रब बख्शने वाला रहमत वाला है। तो यहाँ आप ज़ुर्रहमा में अगर आपको याद दे दी जाए, कहा जाए कि इसमें से मुज़क्कर और मुअन्नस लफ्ज़ ढूँढें, तो आप क्या कहेंगे, वाह इसको तो छोड़ दीजिए ये हर्फ है, रब्बू का रब के लफ्ज़ को अब आप हम जेंडर पे नहीं जा रहे, लेकिन अल्फाज के साथ देखें तो ये मुज़क्कर है, क्योंकि ना तो इसके आखिर में तार है, ना खड़ी आ रही है, ना मद आ रही है, ना अलिफ तार है। फिर अलगफूर, इसके अंदर भी कोई अलामत नहीं, तो ये भी मुज़क्कर है। जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना हो ना, वो मुज़क्कर होता है। फिर आप देखिए ज़ू हर्फ है, इसको छोड़ दें, आगे रह गया लफ्ज़ अर्रहमा, अर्रहमा, तो रहमा क्या हुआ, मुअन्नस हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह सूरत बकरा की आयत 128 में आता है, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक, और हमारी औलाद से अपनी फरमाबरदार उम्मत बना। तो यहाँ लफ्ज़ मुस्लिमतन जो है ये क्या है, मुअन्नस, और उम्मतन क्या है, ये भी मुअन्नस है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मिसाल याद रहेगी, आगे चलते हैं। अब या है, उससे पहले खड़ी ज़बर है, इसम के आखिर में, इसम के आखिर में या और इससे पहले हर्फ पर खड़ी ज़बर हो, तो ये भी एक औरत, वाहिद मुअन्नस के नीचे लिख लें एक औरत, फिर आपको आसान लगेगा, यानी वाहिद मुअन्नस की अलामत है। अब औरत तो मैंने इसलिए कहा ना कि हम औरत से ही मुअन्नस को समझते हैं, लेकिन असल में मुराद है कि एक फीमेल एक मुअन्नस की अलामत है। और ये या पढ़ने में नहीं आती बल्कि सिर्फ लिखने में आती है। बात समझ आती है मिसालों से? कैसे? इसकी मिसालें देख लेते हैं। जैसे लफ्ज़ कुबरा, उर्दू में भी ऐसे ही लिखते हैं ना। अब इसकी या तो नहीं पढ़ते, रा के ऊपर जो खड़ा सबर है उसको हम पढ़ेंगे। तो कुबरा क्या है? एक बड़ी औरत। आप कुबरा का तर्जमा बड़ा नहीं कर सकते, बड़ी करेंगे, कोई भी बड़ी होंगी। फिर आप देखिए ऊला, एक लफ्ज़ होता है अव्वल। अव्वल क्या है? पहला। तो उसकी फीमेल या उसकी मिसेस या उसकी मुअन्नस क्या है? ऊला, पिछली हालत, सीरतिल ऊला, हमारी पहली हालत जो थी। फिर इनकी दोनों की मिसालें सूरह आला आयत 12 में आता है, अल्लज़ी यसलन नारल कुबरा। अब आप इस आयत को थोड़ा सा देखें तो आपको एक बहुत अच्छी बात समझ आएगी, वो जो दाखिल होगा बड़ी आग में। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि लफ्ज़ अल कुबरा क्यों आया, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? ये क्यों नहीं आया अल्लज़ी यसलन नारल अकबर? सवाल समझ आ गए? जी बुशरा पीछे से आप प्लीज़। शाबाश, वेरी गुड। कि अरबी ज़ुबान में जहन्नुम के जो नाम हैं, जिस तरह के यहाँ अन्नार आया, ये मुअन्नस है। ये कौन सी मुअन्नस हुई, कुछ याद है? सुनने को क्या कहते हैं, सारे बोल दें, सिमाई। सुनते सुनते अरबों ने इसको अपने बड़ों से मुअन्नस ही सुना, इसका कोई रूल नहीं है, बस सुन लिया हमने, ठीक है। हालांकि इसके आखिर में आप देखिए अन्नार के आखिर में इन चारों अलामतों में से कोई एक भी नहीं आ रही, ठीक है। अगली मिसाल जो है सूरत दोहा आयत नंबर 4 की है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और अलबत्ता आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर है पहली से, यानी पहली क्या थी? दुनिया। अब आखिरत का ऑपोजिट यहाँ क्या है? ऊला, बाद वाली। आखिरा क्या है? सबसे बाद वाली, ठीक है। और ऊला क्या है? सबसे पहले, बिफोर दैट। एक सबसे पहले थी, एक सबसे आखिर में आ गई। तो अब आप देखिए कि इस एक में आपको अलामतें कितनी मिली मुअन्नस की, से एक जुमले में अलाखिरा तो क्या है, क्या वजह, इसमें कौन सी अलामत पाई जा रही है, जो कि हमने ऊपर देख ली है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ऊला क्या है? मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? या है और उससे पहले खड़ा जबर है। अब हम इसमें किसी में या पढ़ कोई नहीं रहे, जैसे हम कुबरा या नहीं पढ़ते, अल ऊला या नहीं पढ़ते, बल्कि अल ऊला, तो या नहीं पढ़ा। ये भी आसान था। आगे चलते हैं, अलिफ के ऊपर मद हो और आगे हमजा हो, इसम के आखिर में हमजा हो और इससे पहले अलिफ मद भी हो, तो ये वाहिद मुअन्नस की अलामत है, एक औरत की अलामत है। कैसे? बैदा, बैस किसको कहते हैं? सफ़ेद रंग को। बैजा अंडे को भी कहते हैं क्योंकि वो सफ़ेद होता है। तो बैदा सफ़ेद रंग के लिए इसकी मिसाल सूरह सौफ़ात की आयत 46 में आता है, बैदा लज़्ज़तिल्लिशारिबीन, सफ़ेद रंग की होगी क्या भला? शराब। और अरबों में शराब के नाम भी मुअन्नस के होते हैं अक्सर। वैसे देखिए ख़राब चीज़ें सारी मुअन्नस हैं, जहन्नम भी मुअन्नस है और शराब भी मुअन्नस है। सरासर लज्जत होगी पीने वालों के लिए। तो अब यहाँ हम क्या कहेंगे? बैदा क्यों आया? मुअन्नस है। लज्जत इन क्या आ रहा है इधर? मुअन्नस है, ता की वजह से। किन के लिए? लिशारबीन, वो क्या है? शारबीन क्या है? मुज़क्कर है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बैदा और लज्जत इन इधर शराब की सिफत है, पीने वालों की नहीं है। बात वाज़े, शराब पीने वाले सफ़ेद नहीं है, बल्कि शराब जो वो पी रहे हैं वो वाइट है। इसी तरह आप देखिए सफ़राउ, जर्द रंग के लिए आता है अरबी में, सूरत बकरा की आयत 69 में आता है, इन्नहा बकरतुन सफ़राउन, बेशक वो गाय हो जर्द रंग की। अब आप मुझे बता सकते हैं कि सफ़राउ यहाँ क्यों आया? बकरत उनकी वजह से, क्योंकि बकरा यहाँ मुअन्नस है, तो इसके साथ सफ़रा आ गया। तो ये अलामत थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, वरना बाकी दो तो हमारे उर्दू में भी चलती हैं ना, कुबरा सुगरा। اب آپ مثال آپ کو ایک دیتی ہوں جو اوپر تائے مربوطہ کی ہم نے پڑھی ہے مسلمہ، تو آپ لفظ دیکھیے اسامتن کیسے لکھتے ہیں ہم، تو اب اسامہ لفظ تو مرد کا ہوتا ہے نا نام، لیکن لفظ اسامہ لکھا ہوگا، کوئی آپ سے پوچھے بتائیں یہ مذکر ہے یا مؤنث، آپ کیا کہیں گے؟ لفظ لکھا ہوا اسامتن آپ کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ بتائیں یہ مذکر ہے کہ مؤنث، تو کیا لکھیں گے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ہے ایک مرد کا نام. یہ لکھ لیں آپ اس میں مثال اپنی نوٹ بک میں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے ہمارے پاس کبرا یا کے اگر کھڑی، اگر ایک لفظ ہم بولے عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے کیا عیسیٰ؟ لفظ اگر دیکھے تو ایک پیغمبر کا نام ہے نا، لیکن لکھنے کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے لفظ عیسیٰ جو ہے وہ مؤنث ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. چوتھی علامت الف اور تا، یہ علامت جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے. اب جمع مؤنث کا آپ اپنے پاس ایک کوڈ ورڈ پنجابی اردو کا لکھ لیں، بہت ساری عورتیں، ٹھیک ہے، سب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں عموماً الف تا کے الف کو کھڑی زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے. مثلاً پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، مسلمتن، وہ کیا تھی؟ ایک عورت، تو اس کی جمع کیا ہے؟ مسلماتن، مسلماتن، ٹھیک ہے. تو الف کو ذرا سا لمبا کر دیا اور تا کے اوپر دو ساکن آ گئیں، تو کیا ہوں گی؟ بہت ساری مسلم عورتیں، مؤمناتن، بہت ساری ایمان لانے والی عورتیں. آپ چاہے اس کے ترجمے میں بہت ساری کر لیں یا سب کر لیں، دونوں ٹھیک ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے قانتاتن، سب فرما بردار عورتیں. عابداتن، سب عبادت کرنے والی عورتیں. دلیل دیکھتے ہیں سورۃ نساء کی آیت 23 میں، آپ کو بہت ساری اس کی مثالیں مل جائیں گی. حرمت علیکم امہاتکم، اب امہاتکم میں بھلا کیا ہے؟ کم تو ضمیر ہے نا، اس کو الگ کر دے، پیچھے کیا لفظ رہ گیا؟ امہات. تو امہات میں الف کے بعد تا رہی ہے. اسی طرح یہی پوری آپ کو سب سے بہترین اگزامپل ہے الف تا کو لینے کے لیے قرآن پاک میں، یہ ایک ہی آیت میں ساری آ گئی. بناتکم، اخواتکم، عماتکم، جیسے خالاتکم آئے گا، تو یہ سب کیا ہیں؟ بہت ساری فیمیلز. پھر اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت 72 میں آتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اس میں دو مؤنث کے سیگے آگے نا، کون کون سے؟ مؤمنات جنات، ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے، کوئی مشکل ہے؟ سب سے آسان ہے نا یہ. لیکن اب اس میں کچھ ایکسیپشنز دیکھ لیتے ہیں. نوٹ، کبھی مذکر اسما یا جمع کے آخر میں بھی تا آ جاتی ہے، مثلا طلحتو، جیسے ابھی ہم نے دیکھا اسامتو، بالکل یہ اسی کیٹیگری کی چیز ہے. اب طلحہ کا لفظ جب کسی مرد کے نام کے طور پر آئے گا تو وہ ایک مرد ہوگا، لیکن لفظ طلحہ اگر آپ کو کوئی لکھ دے دے کہے کہ بتائیں یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. حذیفتو، ٹھیک ہے، نام مرد کا ہوتا ہے لیکن لکھنے میں یہ مؤنث ہے. اسامتو، سلمتو، اب سلمہ ہمارے ہاں عموماً عورت کا نام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صحابہ کرام میں دیکھیں تو سلمہ بن عقبہ ایک صحابی تھے، یہ مردوں میں جاتا ہے نام. ملائکتو، اب اس میں بھی آپ دیکھیے تا پہ پیش ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی مذکر اسما یا جمع کے آخر میں بھی گولتا آ جاتی ہے، کبھی کبھی. ابھی تک جتنی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ واحد کی دیکھ رہے ہیں، جمع کی بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ آلیہتن، اب الہ کے لفظ کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی مذکر کا تصور آتا ہے نا، لیکن لکھنے میں یہ لفظ مؤنث ہے. پھر السینتن، کیا ہوتی ہے السینتن؟ زبان، ٹھیک ہے، لسان کی جمع، السینتن زبان. افئدتن، یہ کیا ہوتا ہے؟ دل. فؤاد سے افئدہ، بعض دفعہ آپ دیکھیں گے واحد جو ہے وہ مذکر ہوگا لیکن جمع میں آ کے وہ چیز مؤنث بن جاتی ہے. جیسے لسان مذکر ہے دیکھنے میں لفظوں میں، لیکن السینتن پہ آ گیا تو مؤنث ہو گیا. اسی طرح علامت الف مت حمزہ بھی جمع کے آخر میں استعمال ہو جاتی ہے، مثلا علماء. اب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں بھی پڑھتے ہیں علماء، اب دیکھنے میں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں تو الف مت کے بعد حمزہ ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ یہ علامت جو ہے جمع کی ہے، جمع کے آخر میں یہ لفظ آئے, ضروری نہیں کہ یہ مؤنث ہو. اسی طرح رحماء بینہم, شہداء اشداء علی الکفار کے لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں, اشیاءہم آباء ابناء. یہ تو ایک ایکسیپشن تھی. عربی زبان کے بارے میں ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا, کوئی اصول ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا, اس میں ہمیشہ ایکسیپشنس ہوتی ہیں. تو یہ بات کلیئر ہے. اب آپ اپنے طور پہ اس میں جو چار علامتیں آئی ہیں, ان چاروں کی پانچ پانچ مثالیں اپنی ہوم ورک کی بک میں لکھیں گے. ایکسرسائز تو مینٹ پہ کرتے ہی ہیں, لیکن ہر کی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ چیز زیادہ اچھی ہو جائے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الف مد حمزہ کے ساتھ جو لفظ آتے ہیں وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں, سوائے ان لفظوں کے, یا اس قسم کے ایکسیپشنس ہیں. اور عربی زبان میں ہمیشہ ایکسیپشن رہے گی, کبھی بھی آپ ایک چیز کو ہر ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ سکتے.